हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रात के समय अरमान अपने कमरे में बैठकर काम कर रहा था। नव्यांशी के आने के बाद उसे सच में राहत मिली थी। वो घर के कामों में भी थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देती थी। शाम को जब भी वो अपना प्रोफेशनल वर्क करता, तब नव्यांशी मनन को संभाल लेती थी। रोहन उम्र में छोटा था, लेकिन फिर भी वो काफी मैच्योर था। ज्यादातर वो पढ़ने में लगा रहता या फिर अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। हाँ, मनन जरूर बीच बीच में आकर उसे डिस्टर्ब करता रहता था। हमेशा की तरह आज भी अरमान अपने काम में लगा था, तभी उसके पास लॉयर का कॉल आया। वो रोहन के केस के सिलसिले में बात कर रहा था। हालांकि वेद ने रोहन की खराब मेंटल और फिजिकल हेल्थ का हवाला देकर अब तक उसे कोर्ट में जाने से रोक रखा था, लेकिन अब डेढ़ महीने बाद आखिर रोहन को कोर्ट में पेश होना जरूरी ही था। रोहन भले ही शांत रहे, लेकिन अरमान अच्छे से समझता था कि जो भी हुआ है वो उसके लिए भूल पाना मुश्किल था। खुद अरमान भी उस बारे में सोचता तो उसकी रूह कांप जाती थी, जबकि रोहन तो फिर भी बच्चा था। रोहन को वहां ले जाने से पहले अरमान का उससे बात करना जरूरी था। उस कॉल के बाद वो परेशान हो गया था। अरमान धीमे कदमों से चलकर मनन के कमरे में गया, जहां मनन और नव्यांशी एक दूसरे के साथ लूडो खेलने में लगे थे और रोहन चुपचाप बैठा उन्हें देख रहा था। अभी भी वो खोया हुआ था। अरमान को देखते ही मनन खुश होकर बोला, अरमान तुमने कहा था कि मुझे काम में डिस्टर्ब मत करना, तुम्हारा काम हो गया है क्या? तुम तो लेट तक काम करने वाले थे, तुम फ्री हो गए हो तो आ जाओ, हम सब मिलकर साच में खेलते हैं। मैंने चैंप को बहुत बोला था, लेकिन फिर भी वो खेलने को तैयार ही नहीं। अरमान ने मनन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने रोहन के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखें नम थी, फिर भी वो अरमान को देखकर जबरदस्ती थोड़ा सा मुस्कुराया। मेरा मन नहीं है मनन भैया, आप खेल लीजिए, रोहन ने खुद को मजबूत करके भारी शब्दों में कहा। नव्यांशी ने एक नज़र रोहन की तरफ देखा तो वो भी शांत हो गई थी। ऐसा लगता था कि बहुत कुछ था जो वो कहना चाहता था, लेकिन फिर भी शांत था, जबकि उसके अंदर एक तूफान सा चल रहा होता था। अरमान, रोहन, नव्यांशी ने बोलना चाहा, लेकिन अरमान ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया था। नव्यांशी चुप हो गई। उसने देखा कि अरमान भी काफी सीरियस नजर आ रहा था, तो उसने उस वक्त बोलना सही नहीं समझा। चलो अकेले में बात करते हैं चैंप, अरमान बोला और रोहन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। नव्यांशी समझदार थी, वो जानती थी कि फिलहाल अरमान और रोहन को अकेला छोड़ने की जरूरत है, लेकिन मनन में इतनी समझ नहीं थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ और उनके पीछे आते हुए बोला, ये गलत बात है अरमान, तुम मेरे भाई हो, फिर तुम चैंप को कैसे टाइम दे सकते हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ गेम खेलने वाले हो। अरमान जल्दी से उनकी तरफ पलटा। उसने नव्यांशी से कहा, नव्यांशी क्या तुम थोड़ी देर के लिए मनन को अपने पास रख सकती हो? बस आधे घंटे की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा और आई प्रॉमिस तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। बोलते हुए वो मनन के पास आ गया था और उसने मनन का हाथ कसकर पकड़ लिया था। कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थिति में अरमान का अकेले मनन को संभालना मुश्किल हो जाता था। नव्यांशी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। नव्यांशी को भले ही वहां आए हुए सिर्फ 2 या 3 दिन हुए थे, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उसे मनन को कैसे समझाना है। नव्यांशी जल्दी से खड़ी हुई और उसने अपना मोबाइल निकालकर मनन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मनन आज मैंने एक नया गेम डाउनलोड किया है, जब तक अरमान चैंप को लेकर वापस आता है क्यों ना हम लोग उस गेम को खेलें? मुझे अच्छे से पता है तुम अरमान के कहने पर मुझे अपना फोन दे रही हो, वरना तुम मुझे अपने मोबाइल को छूने तक नहीं देती हो, मनन ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें डिलीट कर दो। अच्छा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें एक नया टैबलेट गिफ्ट करूंगी, कल हम बाहर शॉपिंग करने चलेंगे और तुम्हारे लिए टैबलेट लेकर आएंगे, फिलहाल तुम अरमान को चैंप के साथ जाने दो, नव्यांशी ने सिर हिलाकर कहा। प्रॉमिस करो, मनन ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर अपना हाथ नव्यांशी के आगे कर दिया था। ओके प्रॉमिस, नव्यांशी ने जवाब दिया, जिस पर मनन खुश हो गया था। नव्यांशी के प्रॉमिस करते ही मनन का ध्यान भटक गया था और उसने अरमान का हाथ छोड़ दिया था। उसके बाद उसने अपना मोबाइल मनन को दे दिया था। हालांकि उसका मन अभी भी इस बात में लगा हुआ था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से अरमान अचानक इतना सीरियस नजर आ रहा था और साथ ही वो रोहन को अपने साथ लेकर गया था। वहीं दूसरी तरफ अरमान रोहन के साथ अपने वर्क स्पेस में आ गया था। वहां आते ही उसने सबसे पहले कमरे का दरवाजा बंद किया। उसने रोहन की तरफ देखा। रोहन अपने मुंह से कुछ भी ना कहे, लेकिन अरमान सब समझता था। कमरे के अंदर आते ही अरमान ने झुककर रोहन को गले लगा लिया था। इसी के साथ रोहन के दिल में दबा हुआ दर्द बाहर आ गया था और वो जोर जोर से रोने लगा था। अरमान ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध रखा था ताकि वो अपने जज्बातों को काबू कर सके, लेकिन अरमान की आंखों से आंसू का एक कतरा बह ही गया। सब ठीक हो जाएगा चैंप, तुम बहुत स्ट्रांग हो और आई नो हम कर लेंगे, अरमान ने भारी आवाज में कहा। मैं नहीं हूँ स्ट्रांग अरमान भैया, मुझे बहुत डर लगता है, रात को नींद भी नहीं आती, जब भी सोने की कोशिश करता हूँ वो सब मेरी आंखों के सामने फिर से घूमने लगता है,
मैं जानता हूँ आप लोगों के होते हुए वो वापस मेरे पास नहीं आ पाएंगे, लेकिन काश मैं अपनी मेमोरीज में से वो सारी यादें डिलीट कर देता, रोहन ने सुबकते हुए कहा। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में रोहन से कैसे बात करे। रोहन की साइकेट्रिस्ट तक बार बार यही कंप्लेन करती थी कि रोहन उसे ठीक से कुछ बताता नहीं है और ना ही उसके साथ कॉपरेट करता है। ऐसे में उसे डर लग रहा था कि रोहन परसों होने वाली हियरिंग में अंकुश का सामना कैसे कर पाएगा। अब तक अरमान ने इस बारे में वेद को कुछ नहीं बताया था, वो नहीं चाहता था कि शिवांशा की लाइफ डिस्टर्ब हो, पर अब शिवांशा और वेद को आगे आकर रोहन को संभालना ही पड़ेगा। काफी देर रोने के बाद जब रोहन शांत हो गया था तब अरमान उसके सामने घुटनों के बल बैठा और अपने दोनों हाथों से उसके आंसुओं को साफ किया। कुछ चीजें कभी डिलीट नहीं हो सकती रोहन, लेकिन हाँ, जिसने हमारे साथ बुरा किया होता है हम उसे उसका सबक सिखा सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत जुटाने की जरूरत है। हमारी शिवी को ही देख लो, तुम जानते हो ना उस घटिया इंसान ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आज वो मिस्टर चौहान के साथ खुश है। ये सब इसलिए हो सका क्योंकि शिवी ने हिम्मत की थी। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें हिम्मत दिखाकर उनका सामना करना होगा, उन्हें उनके किए की सजा दिलानी होगी। जब वे अपने बुरे कामों की सजा भुगतेंगे तब तुम्हारे दिल में एक सुकून महसूस होगा और साथ ही तुम इन सब से बाहर निकल पाओगे। अरमान काफी प्यार से रोहन को समझा रहा था और वो अपने हर एक शब्द का संभल कर इस्तेमाल कर रहा था। अरमान ने एक बार भी क्लियरली रोहन से सच नहीं कहा, लेकिन रोहन काफी समझदार था, उसके बिना कुछ कहे ही वो सब समझ रहा था। रोहन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी आसानी से हिम्मत नहीं कर पाता। अरमान ने गहरी सांस ली और कुछ पल रुक कर कहा, अच्छा क्या तुम परसों मेरे साथ उदयपुर चलोगे, वहां शिवी और मिस्टर चौहान से मिलेंगे? क्या सच में? रोहन ने जल्दी से पूछा। शिवांशा से मिलने के नाम पर ही उसके बुझे हुए चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई थी। हाँ सच में, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, नव्यांशी मनन को संभाल लेगी और मैं केयरगिवर को भी बुला लूंगा, अरमान ने मुस्कुराकर कहा।
लेकिन मनन भैया बहुत जिद्दी हैं, वे आपको अकेले नहीं जाने देंगे, वे आपको छोड़ना ही नहीं चाहते, रोहन ने मासूमियत से कहा। हाँ मैं जानता हूँ वो बहुत जिद्दी है, और दो जिद्दी लोग एक दूसरे को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, अरमान ने हंसकर कहा। वो यहाँ नव्यांशी की बात कर रहा था और रोहन वो समझ गया था, वो भी हल्के से हंस पड़ा था। रोहन नव्यांशी से ज्यादा बात नहीं करता था, पर वो इतने दिनों में समझ गया था कि वो सच में काफी जिद्दी है। उसके बाद अरमान रोहन को बाहर लेकर जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर खड़ी नव्यांशी जल्दी से दौड़कर वापस मनन के पास चली गई थी। हालांकि उसने दोनों की पूरी बातें नहीं सुनी थी, लेकिन जब वे दोनों नव्यांशी और मनन का जिक्र कर रहे थे तब उसने सुन लिया था और नव्यांशी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ डिनर के बाद वेद शिवांशा के साथ ऊपर अपने कमरे में पहुंचा। वंश के इरादे भले ही बुरे ना हों, लेकिन जब उसने शिवांशा पर सवाल उठाया था तब से शिवांशा काफी मायूस हो गई थी। उसे नहीं लग रहा था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कभी उन लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाएगी। रूम के अंदर आते ही शिवांशा जल्दी जल्दी काउच पर अपना पिलो रखने लगी और ब्लैंकेट सेट करने लगी। वो वेद से भी बात नहीं कर रही थी, उसे डर था कि अगर वेद ने उसे जरा भी प्यार से बात की तो वो फिर से रो पड़ेगी। वहीं वेद अपने बेड के पास चुपचाप खड़ा उसकी हरकतों को देख रहा था। सब कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में शिवांशा गड़बड़ किए जा रही थी। सोने के लिए काउच सेट करने के बाद शिवांशा की नज़र वेद के ऊपर पड़ी। वेद ने उसकी तरफ देखकर सार्केस्टिकली सिर हिलाया और अपनी बाहें फैलाकर धीमी आवाज में कहा, मेरे पास आओ। शिवांशा ने बिना कुछ बोले नामे सिर हिला दिया था। इससे पहले कि वो कोई बहाना देती और सोने के लिए अपने काउच पर जाती, वेद खुद ही उसकी तरफ बढ़ गया था और उसने शिवांशा को प्यार से अपने सीने से लगा लिया था। तुम रो सकती हो और मेरे सामने तुम्हें खुद को स्ट्रांग दिखाने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वेद ने शिवांशा के बालों को सहलाते हुए कहा। जैसे वेद के कहने भर की देर थी और शिवांशा छोटी छोटी सिसकियां लेते हुए रोने लग गई थी। उसने वेद की शर्ट को कसके पकड़ लिया था। वंश की तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, गलती मेरी ही है कि वो मुझे लेकर इतना ओवर पजेसिव होता रहा और मैंने उसे कभी टोका नहीं। हालांकि मैं भी उन्हें लेकर इतना ही इम्पल्सिव हूँ, लेकिन उनकी तरह इमेच्योर नहीं हूँ, वेद ने उसे समझाते हुए धीरे से कहा। उसे सच में शिवांशा के लिए बुरा लग रहा था। उनकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है जो मेरी वजह से उस दिन बात आपकी जान पर बनाई थी। मैं अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, शिवांशा ने सुबकते हुए कहा। और फिर उसने अपना सर उठाकर वेद की तरफ देखा और आगे बोली, मेरा यकीन कीजिए, मैं सपने में भी आपको चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर किसी दिन आपको कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, फिर मैं आपके खाने में क्यों कुछ मिलाऊंगी? आप उन्हें बोलो ना कि वो मुझ पर ट्रस्ट करें। बातों ही बातों में शिवांशा अपने प्यार का इजहार कर रही थी। वेद के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने अपने अंगूठे से शिवांशा के आंसुओं को साफ किया और हल्के से उसकी नाक को खींचते हुए कहा, बिल्कुल, मैं सुबह वंश को बहुत डांटने वाला हूँ, उसने मेरी लिटिल सी वाइफ का दिल कैसे दुखाया। नहीं, आप उन्हें मत डांटना, वरना सबको यही लगेगा कि मैंने ही आपको ऐसा करने के लिए कहा है, शिवांशा ने मासूमियत से कहा। फिर भी उन्हें समझाना जरूरी है, वेद ने जवाब दिया। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी। जब उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया था तब उसे एहसास हुआ कि वेद ने उसे काफी प्यार से थाम रखा है, जबकि अक्सर शिवांशा को उसके करीब आने के लिए बहाने बनाने पड़ते थे। शिवांशा फिर से वेद के सीने से लग गई थी और उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी, जो उसे किसी संगीत से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर आई शरारती मुस्कुराहट को देखकर वेद ने सार्केस्टिकली सिर हिलाया और उसे खुद से दूर कर दिया था। लेकिन मेरा मूड अभी ठीक नहीं हुआ है, शिवांशा जल्दी से बोली। रियली? वेद ने बौहें चढ़ाकर कहा। अच्छा,
पहले तो मैंने किसी को खराब मूड में इस तरह आंखों में शरारत ली मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तुम ना बिल्कुल किसी शैतान बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही हो जो अपनी फेवरेट चीज़ को पाने के लिए उल्टे सीधे बहाने बनाता है। हाँ, तो फेवरेट चीज़ भी तो उसके पास आने के लिए कितना भाव खाती है, शिवांशा ने बिल्कुल धीरे से बड़बड़ा कर कहा। वेद उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। शिवांशा ने बिना कुछ कहे नामे सिर हिला दिया था। वेद की नज़दीकी की वजह से उसका मूड सही हो गया था। इससे पहले कि हमेशा की तरह वेद उसे सोने का कहता, वो खुद ही काउच पर जाकर लेटने लगी। लेकिन तभी वेद के पास अरमान का मैसेज आ गया था। अरमान ने मैसेज के अंदर लॉयर का कॉल आने से लेकर रोहन की मेंटल हेल्थ के बारे में सब कुछ लिख दिया था। परसों हर हाल में रोहन को कोर्ट लेकर जाना था और उसके लिए उसका मेंटली तैयार होना जरूरी था। ऐसे में वेद और शिवांशा ही उसकी मदद कर सकते थे। मैसेज पढ़ने के बाद वेद ने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा, जिसका मूड मुश्किल से ही सही हुआ था। अरमान का सिर्फ रोहन को संभालना ही नहीं, ऐसे में वेद का शिवांशा को संभालना भी मुश्किल साबित होने वाला था। ऊपर से मामला अंकुश से जुड़ा हुआ था, तो यह तय था कि एक बार फिर अंकुश और शिवांशा का आमना सामना होने वाला था। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। वेद है तो चिंता की क्या फिक्र, सबको संभाल लेगा वो। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। और हाँ, सब समीक्षा करके जाना। आपको नहीं पता, लेकिन मैं आजकल अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर कितनी मुश्किल से लिख पा रही हूँ। सो आई वॉन्ट फुल अप्रिसिएशन।